Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Ishavasya Upanishad, presented by Swami Sri Advaitananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
काम क्रोधादिकों की भी वृत्ति उसके अंदर न उठना, उसका नाम स्थिरता है। परमात्मा का नाम लेती होता क्या है? परमात्मा का नाम लेती ही आपका अंतकरण स्थिर होता है। क्यों स्थिर होता है? क्योंकि जैसा ही परमात्मा का नाम लिया, संसार छूट गया। क्या छूट गया? संसार छूट जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता है, आपको नहीं मालूम पड़ता है, परंतु छूट जाता है। इसी त्याग से कहते भोग करो। आगे इसमें कहते मा गृदह कस्य स्मित धनम। कहा कि इस प्रकार से जब भोग होगा, कौन सा किसका भोग होगा? परमात्मा के आनंद का भोग किसको होगा? क्या जो भोग करना चाहता है साधक के लिए, मुमुक्षु के लिए कहो, जिज्ञासु के लिए कहो, साधक के लिए कहो, या भक्त के लिए कहो, बात एक ही है। भक्त परमात्मा का, परमात्मा को स्वीकार करता है तो अपने को परमात्मा का मानने लगता है, परमात्मा को अपना मानने लगता है, तो दोनों की एकता होती है, तो भक्त को आनंद प्राप्त होता है। योगी चिंतन करता है परमात्मा का, तो उस चिंतन के द्वारा चिंतने चिंतने तद्रूपता योगी के अंदर भी परमात्मा रूपता आ जाती है, तो वो भी परमात्मा के साथ एक होता है। ज्ञानी संसार को मिथ्या करके अपने को ही ब्रह्म भाव से भावित होकर के ब्रह्म चिंतन करते करते उस ब्रह्म का, आत्मा का ही ब्रह्म के रूप में ज्ञान प्राप्त करता है, तो अमृतत्व का भोग होता है। योगियों को आनंद का भोग होता है और भक्त को प्रेम का भोग होता है। भक्त के अंदर इतना प्रेम आता है, इतना प्रेम आ जाता है कि वो अपने को भी भूल जाता है, और जब अपने को भूल जाता है तो परमात्मा ही बन जाता है। क्या वो परमात्मा ही? जिस इष्ट का स्मरण कर रहा है, जिस इष्ट का शरणागति कर रहा है, जिस इष्ट को अपना लिया है, वो वही बन जाता है। ये गोपियों का अनुभव है, सभी भक्तों का अनुभव है। इसका वही भोग है यहां। क्या? इसलिए श्रुति ने यह बता करके अब कहा कि इसके अलावा, क्योंकि हमारे जीवन का परम धन यही है। श्रुति यह कहती है कि मा गृदह कस्य स्मित धनम, कस्य स्मित धनम मा गृदह। फिर जब इस प्रकार से भोग करो तब कस्य स्मित धनम मा गृदह। कस्य स्मित, इसके कई लोग अलग अलग अर्थ करते हैं, परंतु भगवतपाद शंकराचार्य जी कहते हैं कि किसी के भी धन की इच्छा न करे। कस्य स्वित अर्थात किसी के भी। कुछ ये भी कहते हैं कि फिर धन किसका? कस्यचित धनम, फिर धन किसका है? तात्पर्य दोनों का एक ही है, क्योंकि जब इस प्रकार से परमात्मा का आनंद का भोग मिल जाएगा तो आनंद से फिर कोई दूसरी वस्तु है क्या? आनंद से दूसरी कोई वस्तु है? स्वर्ग का अमृत पान करने के लिए मिल जाए तो मर्त्य लोक की छाछ की इच्छा करना क्या है? नादानी है कि और कुछ है? नादानी है। जब ब्रह्मामृत मिल जाएगा, ज्ञानामृत मिल जाएगा, आनंदामृत मिल जाएगा तो फिर विषयामृत की इच्छा करना निरर्थक है कि नहीं है? तो कह रहे कस्य स्वित धनम। अब यहां कस्य स्वित और धन, ये तीन पद इसके अंदर है क्या? और तीनों पद विचारणीय है। कस्य का मतलब किसका, क्योंकि यहां षष्ठी है कि नहीं है? ये षष्ठी का एक वचन है, संबंधे षष्ठी। कहा है कि जहां षष्ठी होगी तो निश्चित संबंध होगा। तो श्रुति ये भी कहती है कि कस्य स्वित, कस्य अर्थात किसका, और स्वित किसका कहने से बाहर गया और स्वित कहने से अंदर आ गया, क्योंकि स्व आ गया ना, स्व, स्व का मतलब अपना, क्या? स्व का मतलब अपना अपना, अर्थात ना दूसरे के धन की इच्छा करो और ना अपने धन की इच्छा करो, समझे ना? कस्य स्वित शब्द दिया कि नहीं? स्वित, स्वित का मतलब जो अपना है, अपने अंदर है, और एक बाहर है, जगत के अंदर है। इसलिए जगत अर्थात दूसरा, जगत अपने से दूसरा है। किसका है वो? तुम्हारा है क्या? जगत किसका है? माया का, माया का। जगत किसका है? माया का है। ब्रह्म का है ऐसा मत समझना कभी भी, ईश्वर का है ऐसा मत समझना, समझ ना? कारण भला मान सकते हो, परंतु वो भी कारण कैसा है? आरोपित है, आरोपित कारणता है, वास्तविक नहीं कारणता है, क्या? आरोपित कारणता है। जैसे आप लोग किसी महात्माओं के ऊपर आरोप करते हैं, क्या कहते? महाराज ये सब आपकी ही कृपा से हुआ है, क्या? बच्चा हो गया तो कहते महाराज आपकी कृपा से ही हुआ है, धन मिल गया तो कहते महाराज आपकी ही कृपा से हुआ है, विद्यार्थी पास हो गया, लड़का पास हो गया तो महाराज आपकी कृपा से हुआ है। तो ये कृपा का आरोप कर रहे हैं कि वास्तविक कृपा है? आरोप है, आरोप, समझना। ऐसा ही ईश्वर के ऊपर इस जगत के कारणत्व का आरोप है, समझना। अरे बच्चा पास हो गया, उसने अपना पढ़ाई की, अच्छा ये कर दिया, वो पास हो गया तो यहां महात्मा की कृपा को मानने की क्या जरूरत है? परंतु तुम्हारी श्रद्धा मनवा लेती है, समझ ना? ईश्वर ये माया का परिणाम है, ध्यान रखो। आप चित्रपट देखते हो तो उस क्या वो चित्र को निर्माण क्या वो पर्दे ने किया है? पर्दा चित्र है, पर्दे से चित्र है, पर्दे का चित्र है, क्या है? परंतु फिर भी वो पर्दा उन चित्रों के प्रति आरोपित कारणत्व है, अधिष्ठान रूपी न, ऐसा ही परमात्मा का। ये जगत परमात्मा का नहीं है, परंतु चित्र पर्दा ही है कि और कुछ है? चित्र पर्दा ही है। इसी प्रकार से जगत ब्रह्म ही है, ये कहने में कोई दिक्कत नहीं, श्रुति ये बताती है। ब्रह्म का नहीं है परंतु ब्रह्म है, चित्र पर्दे का नहीं है परंतु चित्र पर्दा है। इसी प्रकार से यहां भी कह रही है कि कस्य अस्मित धनम, अर्थात जो तुम बाहर जिस धन को चाहते हो वो तुम्हारा नहीं है, वो दूसरे का है। तो दूसरे का धन को मा कांक्षी, कामना मत कर, ये अर्थ है। कस्य का, कस्य के दृष्टि से कस्य धनम मा गृध, स्वित धनम मा गृध। कस्य का मतलब होता है किसी के भी, क्या या दूसरे के, किसी के भी धन की इच्छा मत कर, कामना मत कर, चाहना मत कर, ये एक अर्थ है। तो कहा चलो किसी के धन की इच्छा न करे, परंतु अपने धन की तो इच्छा की जा सकती है, जो अपना है, क्योंकि अपना भी तो धन है क्या? नहीं है, कुछ मालूम नहीं है आपको, बताऊंगा मैं। कहा कि अपने धन की तो इच्छा कर सकते हैं, आपके धन की इच्छा का मतलब क्या होता है? रक्षा की इच्छा होती है कि नहीं है? हा? जो आप जो ये करते हो, घर बनाते हो, किसके लिए बनाते हो? हा? अपने लिए बनाते हो कि दूसरों के लिए? अपने लिए बनाते हो कि नहीं? अर्थात ऐसी कई वस्तुएं बताएंगे, तो अपना जो अपना धन है उस अपने धन की भी इच्छा होती है, रक्षा की इच्छा होती है, और दूसरे के लेने की इच्छा होती है। क्या होता है? दूसरे की धन की लेने की इच्छा होती है और अपने धन की रक्षा की इच्छा होती है, समझ रही ना? कहने का तात्पर्य है कि यहां दोनों तरफ श्रुति संकेत कर रही है कि कस्य शब्द से दूसरे के धन की आकांक्षा मत कर, कामना मत कर। लेने की तो बातें नहीं, कामना भी नहीं करना है, क्योंकि बड़ा खतरनाक है, समझ रहे? और आपने भी धन के रक्षा की कामना मत कर। अब धन क्या है कि जिसकी कामना की जा सकती है? ये जो हम जिसको धन कहते हैं, ये एक प्रतीकात्मक धन है। क्या? ये प्रतीकात्मक धन है। जैसा मूर्ति परमात्मा की प्रतीकात्मक है कि नहीं है? मूर्ति को देखते हैं तो आपके अंदर भाव निर्माण, परमात्मा भाव निर्माण होता है, उस भाव की अभिव्यक्ति का साधन है। क्या? इसी प्रकार से बाहर का धन आपके अंदर एक भाव निर्माण करने का साधन है। भाव क्या? क्योंकि उसी से ही, उसको देख करके आपके अंदर एक वृत्ति निर्माण होती है। वृत्ति क्या? एक वृत्ति निर्माण होती है। अवृत्ति कई प्रकार की है। वृत्ति का मतलब होता है एक प्रकार का होनापन। आपके अंदर काम निर्माण होता है। काम, वृत्ति का मतलब काम, यदि लेने की है तो, समझे ना। और वो काम क्या करता है? कामात्मक वृत्ति आपके अंदर अंतकरण में उत्पन्न हो गई तो कामात्मक वृत्ति आपके अंतकरण को क्या करेगी? देखो, पानी में एक पत्थर डाल दिया तो पानी में विकार निर्माण होता है कि नहीं होता है? तरंग निर्माण होगा कि नहीं? तो इसी प्रकार से ये बाहर के वस्तु को, दूसरे के वस्तु को आप अपने अंतकरण में डालोगे तो अंतकरण में तरंग उठेंगे कि नहीं उठेंगे? वो तरंग का नाम ही है वृत्ति, समझना। अब वो तरंग जब उठेगा तो तरंग फैलेगा कि नहीं फैलेगा? फैलेगा। अर्थात पूरे पानी को क्या करेगा? पूरे पानी को चंचल बना देगा, विक्षिप्त कर लेगा। तो इसी प्रकार से बाहर के धन की आप यदि कामना करते हैं तो ये काम जब इच्छा अंतकरण में निर्माण हो जाएगी उन विषयों के संग से, तो अंदर अंतकरण में काम उत्पन्न हो जाएगा। और काम क्या करता है? भगवान ने काम को जीव का शत्रु कहा है। क्या कहा है? जीव का शत्रु। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्येन मिह वैरिणम। ये हमारे जीवन के, जीव के शत्रु है। देह के नहीं, तो आप कहेंगे कि चलो जीव के भले हो, पर देह के तो पोषक है कि नहीं है? अरे काम से देह का पोषण नहीं होता है। काम तुम्हारे देह का, काम तुम्हारे देह को पोषित नहीं करता है। पोषण किससे होता है आपको ये भी नहीं मालूम है? पोषण तो परमात्मा के प्रेम से होता है। पोषण तो परमात्मा के आनंद से होता है। आनंद ही तुम्हारे जीवन को पुष्ट कर रहा है। काम तो अग्नि है। क्या है? काम को अग्नि कहा है, क्रोधाग्नि कहा है, कामाग्नि कहा है। काम तो तुम्हें जलाने वाला है। और जो जलाने वाली वस्तु होगी वो तुम्हें पोषने वाली होगी क्या? कतई नहीं होती है। काम तो तुम्हारे देह को भी जलाता है, इसलिए तो बूढ़ा होना पड़ता है। बूढ़ा कौन होता है? तुम होते हो कि देह होता है? देह होता है कि नहीं? क्यों होता है नहीं मालूम आपको? रहस्य नहीं मालूम है? का उम्र हो गई महाराज? उम्र हो गई तो बूढ़े हो गया। उम्र क्या है? कभी भी सोचते ही नहीं क्या है तो। अरे ये कोई काल तुम्हें बुढ़ा नहीं करता है, और काल तुम्हें मारता भी नहीं है, ये ध्यान रखो। काम तुम्हें जला रहा है, काम तुम्हें बुढ़ा बना रहा है, तुम्हें मालूम ही नहीं है, समझ ना। काम ही तो तुम्हें कर्म में प्रवृत्त करता है, कर्म भोग में प्रवृत्त करता है, और वो भोग तुम्हें क्या कहे, भोगो न भुक्ता स्वयमेव भुक्ता। तुम उन भोगों के द्वारा भोगे जा रहे हैं। क्या है ये कर्म का भोग है तुम्हारा, बुढ़ा जो हो रहे हो ना, ये तुम्हारे कर्म का भोग है। और वो कर्म किसका है, काम से है। काम ही तो कर्म निर्माण करता है, ये चक्र चलता रहता है। और दोष तुम्हें कभी परमात्मा के ऊपर देते हो, कभी काल के ऊपर देते हो, कभी रोग के ऊपर देते हो, कभी किसी प्राणी के ऊपर देते हो कि उसने उसकी हत्या कर दी। नहीं, ये उसके पिछले रहस्य हम नहीं देखते, इसलिए ऐसा बोलते ऐसा कहते हैं। समझे ना, ये काम तुम्हें मार रहा है, काम तुम्हें क्षीण कर रहा है। कमजोर जो होता है, कमजोरी जो होती है, मन जो दुर्बल बन जाता है, वो क्यों? भगवान ने क्या कहा है अर्जुन को, इतना शूर वीर महायोद्धा धनुर्धारी, परंतु गांडीवम स्रंसते हस्ता त्वच्चैव परिदह्यते। अर्जुन ने कहा, महान पराक्रमी, महान बलवान, महान भक्त, महान तपस्वी, परंतु काम ने घायल कर दिया। क्या कर दिया? अर्जुन नहीं जानता है, परंतु भगवान जानते हैं कि अर्जुन की यह स्थिति क्यों हो गई। समझना, और वो निवृत्त करने का ही साधन भगवान ने अर्जुन को बताया। वो काम ने अर्जुन के हृदय को दुर्बल बना दिया, दुर्बल। समझना, काम ने मोह निर्माण कर दिया, और मोह ने ये अंतकरण की दुर्बलता जो है वो मोह, वही मोह है। और वो मोह क्यों? काम के कारण। सबकी जड़ काम है, काम बड़ा गहन है, समझे। संस्कार रूप काम है, वासना रूप काम है, और इच्छा रूप काम है। जब इच्छा होती है तो वो इच्छा भी काम है, परंतु ये स्थूल काम है। वासना रूप काम सूक्ष्म काम है, और संस्कार रूप काम अत्यंत सूक्ष्म है। तो यहां कह रहे हैं कि दूसरे के धन की इच्छा मत कर, अर्थात तुम कामना मत कर दूसरे के धन की। देखो इसमें भी रहस्य, श्रुति का एक एक वाक्य बड़ा, क्यों कह रही है कि दूसरे की इच्छा की कामना मत कर? क्योंकि श्रुति जानती है कि तुम्हारे अलावा कुछ है ही नहीं, कोई धन नाम की कोई वस्तु नहीं है। तुम जो असत वस्तु के तरफ जो दौड़ रहे, इससे तुम क्या हो जाएंगे, तुम अपने से विचलित होकर के अपने को भूल जाओगे और असत में चले जाओगे जो नहीं है। समझना, जैसे मृगजल के नदी में स्नान करने की ये हो गई, मृगजल देखा और कहा कि चलो अभी यहां जाकर के, अरे ये कि कितना जल से तो भरा हुआ तालाब है, और बड़ा संताप हो गया, सूर्य की गर्मी हो रही है, अब उस तालाब में जाकर के क्या करेंगे, स्नान करेंगे, शीतलता प्राप्त करेंगे, है ना? ये कौन करेगा? अब जो मृगजल को हो वास्तविक मानता है वही तो करेगा कि नहीं है, और जो मृगजल को हो जानता है वो करेगा क्या? नहीं। श्रुति जानती है और जीव नहीं जानता है। ये मृगजल के नदी में स्नान करने के का समान, और उस स्नान से, उस जल से शीतलता को प्राप्त करने के समान ये चीज है। समझ रहे ना, वास्तविक है ही नहीं कुछ, जो नहीं है उसको चाहना अज्ञानता है। इसलिए कह रहे हैं कि तुम दूसरे के धन की इच्छा मत कर, क्योंकि तुम्हारे अलावा दूसरा कुछ धन नहीं है। आत्मधन ही सबसे बड़ा है। अभी घड़ी ने जवाब दे दिया है, इसलिए आज यही विराम करते हैं। अभी दो तीन दिन है समाधि, परंतु कल इस श्लोक को पूरा करूंगा, और फिर दो दिन और है तो उसमें कुर्वन्ने वे कर्माणि इसका प्रारंभ कर लेंगे, फिर बाद देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।